अस्तित्व का एक भौतिक तत्व है जिसके संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने को उसके साथ मिला देते हैं। तो मैं के विश्लेषण कर रहे थे जिसमें हमने ये पाया कि शरीर और यह प्रतीत होने वाला समस्त दृश्य ये दोनों एक ही जात के हैं और हमारा आपका जो यह अहम रूपी अणु है या मैंपन है इसमें एक बहुत स्वाभाविक बात यह है कि प्रतीत होने वाले दृश्य के साथ जब तादाद में जोड़ लेता है तो इसी की भांति बन जाता है और प्रतीत होने वाले दृश्य जगत से मुख मोड़ लेता है अनंत के स्वरूप का बन जाता है इधर से मुख मोड़ लेता है सब उनकी विभूतियाँ मानव सेवा संघ की प्रणाली के अनुसार योग उनकी सामर्थ्य है और ज्ञान उनका स्वरूप है और प्रेम उनका स्वभाव है तो स्वभाव स्वरूप और सामर्थ्य और ये सब बहुत प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करके हम लोग केवल एक ही बात कह सकते हैं कि ये सब उनकी विभूतियाँ हैं और ईश्वर की विभूतियाँ ईश्वर के समान ही अनंत हैं। और स्वामी जी महाराज ने अपनी खोज के आधार पर हम लोगों के विकास की जो चरम सीमा बताई है वो बताई है अनंत की विभूतियों के समान अनंत हो जाना। जीव तभी ब्रह्म हो जाएगा ऐसा स्वामी जी महाराज ने नहीं कहा और लोग क्या कहते होंगे इसका मुझको पता नहीं है। मुंबई में एक बार एक बड़े संत से बातचीत हो रही थी महाराज जी तो उन्होंने पूछा कि जैसे आज सवेरे ना कुछ होने वाली बात थी ना उसी के समय पूछा उन्होंने कि स्वामी जी महाराज ब्रह्म का बोध किसको होता है किसको होता है ये प्रश्न किया पूछने वाले ने। स्वामी जी महाराज ने बहुत प्यार दुलार से उनको थपथपाया और कहा कि अरे यार ब्रह्म का बोध ब्रह्म को होता है ये जवाब दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब लोगों में से जो भाई बहन जिज्ञासु टाइप के हैं अर्थात जो सत्य के जिज्ञासु हैं उनको इस बात में बहुत ही निःसंशय हो जाना चाहिए कि उनके अहम रूपी अणु का विकास कहाँ तक होगा कि उसके सब विकार नष्ट हो जाएंगे और सत्य में सब बुद्धि करने के फल स्वरूप जो दोष पैदा हुए हैं वे दोष सब मिट जाएंगे। असत में सद्बुद्धि क्या मतलब है कि दृश्य में सद्बुद्धि शरीर में सद्बुद्धि सद्बुद्धि का अर्थ है कि सत्य करके मानना जो शरीर सत्य है संसार सत्य है शरीर और संसार के संयोग से जो सुख मिलता है वो सुख सत्य है ऐसा कहकर जो प्रमाद काल में हम दृश्य में सद्बुद्धि रख रहे थे सत्संग के प्रभाव से उसको मिटा देना अर्थात यह सब सत्य नहीं है अस्थाई नहीं है नित्य नहीं है ऐसा करके जान लेना। इससे इस सत्संग के प्रभाव से अहम रूपी अणु में से सब प्रकार की विकृतियों का नाश हो जाता है। शरीर को सत्य मानने से संसार को सत्य मानने से सुखद परिस्थितियों को सत्य मानने से साधक के जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियों की उत्पत्ति हो जाती है और जब सत्संग के प्रभाव से इनमें से सदबुद्धि को छोड़ दिया जाता है, अपनी ओर से निकाल दिया जाता है, तब उसके बाद अहम रूपी अणु में से विकृतियों का नाश हो जाता है। और जब विकृतियों का नाश हो जाता है, जब केवल शुद्ध अहम रह जाता है, तो उस शुद्ध अहम में अपने आप ही उस विचार का उदय होता है जो उसे नित्य तत्व का बोध करा दे। उस अप्रत्याशित गति का आरंभ होता है जो अविनाशी से अविनाशी योग करा दे। उसमें उस पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति होती है जो भक्त को भगवान से मिला दे। ये सब होता है। तो भगवान से मिला दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अहम रूपी अणु की जो सीमा थी वो सीमा टूट गई। अहम रूपी अणु जिस धातु से बना हुआ था उसमें ईश्वरीय प्रेम के प्रवाहित होने से उसके दोष युक्त जितने विकार पैदा हुए थे उन सबों के हट जाने के बाद वो अहम स्वयं ही गल कर प्रेम के धातु में बदल गया। तो क्या हो गया? प्रेम रह गया और प्रेमास्पद रह गया और प्रेम ही उसके बीच में से लुप्त हो गया, नहीं रहा। ये अहम रूपी अणु का विश्लेषण जब होता है तो इस तरह से उसका अंतिम विकास माना जाता है। महाराज जी ने कभी ये नहीं माना कि जिज्ञासा पूरी हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, जीव जो है वो ब्रह्म हो जाएगा। नहीं, ब्रह्म नहीं हो जाएगा, अनंत नहीं हो जाएगा, ईश्वर नहीं हो जाएगा, ईश्वर की विभूति उससे अभिन्न हो जाएगा। वो भक्त होकर भगवान के प्रेम से अभिन्न हो जाएगा, जिज्ञासु होकर नित्य तत्व के प्रकाशमय ज्ञान से अभिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से जो ईश्वर की विभूतियाँ हैं उन विभूतियों के रूप में हमारा आपका अहम रूपी अणु परिवर्तित होकर उसमें मिल जाएगा, ऐसा स्वामी जी महाराज ने व्यक्त किया है। और मनुसेवा संघ की प्रणाली में ऐसा ही विकास की चरम सीमा माना गया है। तो अब आज की अपनी दशा को सामने रखकर हम लोग देख लें किस तरह से हम मिलना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने जगह जगह पर ऐसे लिखा है कि साधक का साधन तत्व से अभिन्नता होती है और साधन तत्व में और साध्य में कोई भेद नहीं होता। जगह जगह पर उन्होंने ऐसे लिखा है कि जब प्रेम प्रेम और प्रेमास्पद यही रह जाते हैं, प्रेमी कहलाने वाला मुक्त हो जाता है। तो प्रेम और प्रेमास्पद का नित्य विहार होता है, जिसको गौरी शंकर का विहार और सीताराम का विहार और राधे श्याम का विहार ऐसे करके महाराज जी ने वर्णन किया है। तो इन सब का अर्थ मैंने यह निकाला कि आज जो अहम है मेरा, जिसके आधार पर मुझसे यह अभिव्यक्ति निकलती रहती है कि मैं साधक हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं खोज में हूँ, मैं चिंतन में हूँ, मैं सत्कर्ता में हूँ, ये सब ध्वनि निकलती रहती है। जिसमें से यह सब ध्वनि निकल रही है उसके विकास की अंतिम सीमा कहाँ पर पहुँचेगी, जहाँ पर मैं सबके साथ जो जुड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, विकास होता जाएगा। इसका प्रमाण क्या है? विकास होता जाएगा इसका प्रमाण क्या है? मन की बात अगर पूरी नहीं हुई तो क्षोभ नहीं आई। मन की बात अगर पूरी हो गई तो ये बहुत बड़े हर्ष की बात है, ऐसा नहीं मालूम होगा। क्यों? क्योंकि अहम रूपी अणु का विकास हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि आप में से, मुझ में से, अर्थात अहम रूपी अणु में से संकल्प की पूर्ति या पूर्ति का महत्व खत्म हो रहा है। ये विकास का समझ में आएगा, जीव का इतना विकास हो गया कि वह ब्रह्म के स्वरूप से अभिन्न हो गया, ये बात हम लोगों के समझ में आने की नहीं। जिन महापुरुषों का यह विकास पूरा हो गया, उन महापुरुषों ने उसको अनुभव किया। हम वर्णन करें तो उस वर्णन का कोई अर्थ नहीं दिया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम मैं स्वयं अपने आप और हमारे समान जो अपने आत्मीय भाई बहन साधक हैं, जो दिन रात इस प्रयास में लगे हैं कि किसी भी प्रकार से मेरा विकास होना चाहिए, उनकी ओर से और अपनी ओर से मैं सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि सत्संग के प्रभाव से अहम रूपि अणु में परिवर्तन आया, उसमें कठोरता और उसमें विकृति का नाश हुआ, वो शुद्धता की ओर विकसित हो रहा है। इसका प्रमाण हम लोगों के पास क्या है, इसकी पहचान हम लोगों के पास क्या है, तब मैं सोचती हूँ कि अगर मन चाही कोई बात पूरी हो गई और उससे हम एकदम हर्ष में भर गए और मन की बात कोई पूरी नहीं हुई और उससे हम अत्यंत खिन्न हो गए, तो इसका अर्थ है कि अभी तक मुझ पर असत का रंग चढ़ा हुआ मन हुआ, उसका असत का रंग चढ़ा हुआ है और मन भी हो गई तो भी आपके किसी विपरीत में कोई फर्क नहीं पड़ा। संतुलन में इक्विलिब्रियम शब्द की ठीक हिंदी ज्ञान बनाए मालूम नहीं होता है, लेकिन अर्थ समझा सकती हूँ। व्यक्तित्व की जो एक सहज स्थिति है, उस व्यक्तित्व की सहज स्थिति में संकल्प पूर्ति के हर्ष से कोई लहर पैदा न हो, समझ में आता है। इक्विलिब्रियम होमियोस्टेसिस जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में, उसमें सहज स्थिति जो है व्यक्तित्व की, उसमें संकल्प पूर्ति के सुख से कोई हलचल पैदा न हो, वो सत्संग का एक प्रभाव इसको माना जाए। और मन की बात कोई पूरी नहीं हुई तो कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, बड़ा भारी क्षोभ हो गया, बड़ी अशांति हो गई, उथल पुथल मच गया, ऐसा न मचे। उस परिस्थिति में भी हमारा संतुलन बना रहे, सहज स्थिति में हम स्थित रह सके, तो हम कहेंगे कि अहम रूपी अणु में इतना विकास हो रहा है कि वह बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से शुद्ध नहीं हो रहा है, स्थिरता की ओर जा रहा है, मोघवित होने की तरफ उसकी गति हो गई, ऐसा हम लोगों को जानना चाहिए और मानना चाहिए। और नहीं तो मैं क्या बताऊं, सौभाग्यशाली कहूँ कि भाग्यहीन कहूँ, कुछ नहीं कहती हूँ, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ऐसे अवसर आते हैं जीवन में कि अधिक से अधिक संकल्पों की पूर्ति का सामान अपने पास जुटा दिया हो, ऐसी परिस्थिति में 10 बात आपके मन के अनुकूल हो गई, एक अगर प्रतिकूल हो गई तो धरती आसमान में आग लग जाती, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकंड के लिए कहीं ठहराव नहीं दिखाई देता, उथल पुथल रोना गाना चिल्लाना धूम मचाना, स्वयं अपने आप में आके से बाहर हो जाना और वायुमंडल में एकदम हिंद महासागर की लहर उठा दे, ये मैंने देखा है। ये साधक की कथा नहीं है, बेचारे जिन भाई बहनों के जीवन में संकल्प पूर्ति की ज्यादा सुविधा नहीं है वे उतना आपों से बाहर नहीं होते, लेकिन जिनको आशा रहती है, जिनको इस प्रकार का एक आभास रहता है कि मैं कोई खास आदमी हूँ, मेरी हर बात मानी ही जानी चाहिए, मेरा हर हुक्म पूरा ही होना चाहिए, इस तरह की दशा जो होती है वो मैं कहूँगी कि अहम रूपी अणु की है विकृत दशा, उनकी बात पूरी नहीं हुई तो उसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, व्यक्तित्व की सहज स्थिति में संक्षोभ पैदा हो गया। मनोविज्ञान में दोनों ही बातों को संक्षोभ कहा जाता है। हर्ष के मारे हलचल हलचल पैदा हो गई एकदम, उसको भी संक्षोभ कहा जाता है। और संकल्प पूरा नहीं हुआ तो भीतर से क्रोध आ गया, बेचैनी पैदा हो गई, तो उसको भी संक्षोभ कहा जाता है। तो आपके व्यक्तित्व में सत्संग का इतना प्रभाव तो कम से कम और तात्कालिक होना चाहिए कि मैं अभी इसी समय इसी क्षण में कोई बात मन की पूरी करना चाहूं, और समाज की जिस समाज में मैं रहती हूँ उसकी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं है। कहा जा रहा है कि अच्छी बात थोड़ा ठहर जाओ तो फिर बात कर लेंगे, इंतजाम करके हो जाएगा, अथवा प्रकृति का विधान है, आपने संकल्प पूरा करके भी संकल्प पूर्ति के सुख का राग नहीं छोड़ा तो प्रकृति आपको हित चिंतन से प्रेरित होकर आपके संकल्प पूर्ति के संयोग में बाधा पूरी करेगी। हो गया चांस, निकल गया मन की बात पूरी होने का, अब अपूर्ति काल आ गया है। तो साधक का काम क्या है कि अपूर्ति काल को देखे तो हर्षित हो जाए कि अच्छा ये मंगलकारी प्रभु का मंगलकारी विधान है, संकल्प पूरा करते करते हमने अपने राग को नहीं छोड़ा तो हितकारी प्रकृति ने अब संकल्प की अपूर्ति काल का समय ला दिया है। तो अब क्या करना चाहिए मुझे कि अपूर्ति में शुद्ध न हो करके शांत रहते हुए संकल्प की निवृत्ति की तैयारी कर लेनी चाहिए, बस किसी मिल जाएगी सब तरफ से, ठीक ऐसा हो जाएगा, सहज से हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि भगवान का दर्शन मुझे हो गया और भगवान से मेरी बातचीत हो गई और अब तो हम संत कबीर की भांति भगवान के प्रेम में भुला गए हैं, अब तो भगवान ही मेरा केयर करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पीछे पीछे फिरते हैं। ये बात कहने की घड़ी कब आएगी वो तो भगवान जाने, लेकिन सत्संग में बैठने का, सत चर्चा करने का, संत की शरण में आने का कम से कम तात्कालिक प्रभाव तो इतना होना चाहिए कि हम लोग अपने आसपास के वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं से अपने में संक्षोभ न पैदा होने दें। तो क्या होगा अगर ऐसा होता है तो हमें कहना चाहिए कि अहम रूपी अणु का विकास हो रहा है। किस ओर विकास हो रहा है? भोग के नाशकारी मार्ग से हटकर योगवित होने की ओर विकास हो रहा है। मनचाही बातों के न होने पर जो शांत रह सकता है उसमें योगवित होने की सामर्थ्य आ जाती है। बाहर की उथल पुथल से जो व्यक्ति अपनी सहज स्थिति से डोलता नहीं है उसमें शांत स्थिर स्थित रह सकता है, उसमें शरीरों से तादात्म्य तोड़ने की सामर्थ्य आ सकती है। और थोड़े थोड़े मान अपमान के प्रभाव पर हम बिक जाते हैं, जरा सा किसी ने मेरे खिलाफ कह दिया तो उसकी जड़ काटने के लिए कटिबद्ध हो गए, थोड़ा सा मुझको खुश करने के लायक कोई बात कह दिया तो उस पर लट्टू हो गए, लट्टू हो गए तो बचे उसकी खातिरदारी करने में अपना नियम संयम मर्यादा सब भूल जाए। कहावत है, कहलाता है लट्टू हो जाना। तो जरा से मेरे मन के मुताबिक किसी ने कुछ कह दिया, मेरे किसी कार्य की प्रशंसा कर दी तो हम उस पर लट्टू हो गए। हाँ, उसका लट्टू हो जाने का मतलब ये है, नहीं नहीं मैं दूसरी बात कर रही हूँ, मैं कहूँ कि इसका अर्थ ये है कि उसके साथ रियायत का व्यवहार करने में हम मर्यादा भूल जाएं, नियम भूल जाएं, कायदे भूल जाएं, जितना करना चाहिए उतना करें, जितना नहीं करना चाहिए उतना भी उसको कर डालें, ये नहीं होना हो गया। तो जरा सा मन के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी जड़ उखाड़ने के लिए कटिबद्ध हो गए, और जरा सा खुश करने के लिए किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर लट्टू हो गए, नियम मर्यादा कायदा सीमा हस्ती सब भूल गए। तो इस तरह की दशा जो है हमारी, ये क्या प्रमाणित करता है कि मुझ पर इस दृश्य जगत का बहुत गहरा गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ है। सत्संग में हम सब लोग आए हैं, जैसे आप आए हैं वैसे मैं भी आई हूँ। जैसे आप सत्संग में साधन के पथ पर अपनी दुर्बलताओं से संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा में लगे हैं, वैसे मैं भी लगी हूँ। तो हम सब लोगों के लिए करणीय क्या है, विचारणीय क्या है? करणीय विचारणीय ये है कि भाई आज यदि मैंने यह पाठ लिया कि शरीर और संसार का प्रभाव मुझ पर नहीं रहना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अगर इसके प्रभाव से हम प्रभावित नहीं होंगे तो साधन सामग्री के रूप में इसका उपयोग कर सकेंगे। प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं तब क्या होता है, तब उपयोग नहीं कर सकते, तब वस्तुओं का संग्रह होने लगता है, तब शरीर की पूजा होने लगती है। सब भाई बहनों को जिन्होंने सत्संग को जीवन में महत्व दिया है, उसका उसको प्रधानता दी है, उसका इम्पोर्टेंस माना है, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सत्य के संग का जोरदार प्रभाव है, कि देह के संग का जोरदार प्रभाव है, कि धन के संग का जोरदार प्रभाव है। तो हम सब लोग जो अपने को सत्संगी करते हैं और सचमुच इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो मैं कहती हूँ कि अहम रुचि अणु का सत्य की ओर विकास हो रहा है, परमात्मा के प्रेम के रूप में बदलने जा रहा है, इस दिशा में हमारी कितनी गति हो रही है, ये सब अपने को देखना चाहिए। समाधि लग गई कि नहीं, और क्या वो एक टेक्निकल टर्म सामने दिया जाता है कि दृष्टि दृष्टि और दृष्टा, ये त्रिपुटी का नाश हुआ कि नहीं, ये तो दूर की बात है, अभी अभी की तत्काल की बात देख रहे हैं। खाना ज्यादा प्रिय लग रहा है कि सोना ज्यादा प्रिय लग रहा है, कि सामूहिक कार्य में हाथ लगाना ज्यादा प्रिय लग रहा है, कि परपीड़ा में शामिल होना ज्यादा अच्छा लग रहा है, कि अपने संकल्प पूर्ति के सुख को छोड़कर अन्य के हितकारी संकल्प की पूर्ति में भाग लेना ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए तो पता चल जाए कि सचमुच हम लोग उत्थान की ओर जा रहे हैं कि जहाँ के कहाँ अटके हुए हैं, ये पता चलेगा। तो अहम रूपी अणु के विकास के संबंध में, अपने विकास के संबंध में, अहम रूपी अणु मैं कहती हूँ केवल वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करने के लिए, नहीं तो कहना चाहिए कि अपने विकास के संबंध में हम लोगों को बहुत जागरूक रहना चाहिए, बहुत जागरूक रहना चाहिए। और रात्रि का समय हो, चाहे प्रातः काल का समय हो, चाहे आधी रात का के समय नींद खुल जाए, तब जो भी कुछ समय अपने पास एकांत में शांति में मिल जाए, उस शांत एकांत की घड़ी में देखना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इससे आपको बहुत बल मिलेगा, रास्ता मिलेगा, दिखाई देगा कि हमारी दशा क्या हो रही है। अब कोई एक बात है और मैं सोचती हूँ कि वो बहुत जरूरी है और वो बात पूरी नहीं हो रही है, तो किसी समय मुझको ऐसा लगता है कि भाई मुझको व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम है, तो मैंने ठीक इंतजाम नहीं किया, इसलिए ये बात पूरी नहीं है। ऐसा जब लगता है तब अपने में कमी महसूस होती है, फिर याद आता है। तो सोचती हूँ कि अनेक बार घटनाओं से यह प्रमाणित हुआ कि मेरे जान से जो बात बहुत जरूरत की थी वो आगे चल करके गैर जरूरी प्रमाणित हुई, तो नहीं हो रही है मेरी सोची हुई बात, तो इसमें हमको उलझना नहीं चाहिए। और एक मजेदार उदाहरण आपको बता दूं, एक बार मैंने बहुत जरूरी दो पत्र लिखे दो जगह, और दोनों पर विपरीत एड्रेस लिख दिया, इसका एड्रेस उसमें लिख दिया, उसका एड्रेस उसमें लिख दिया, जिसका संबोधन किया गया था उसका एड्रेस दूसरे पर, और उस चिट्ठी में जो एड्रेस होना चाहिए था सही लिख दिया। असावधानी की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसके लिए बहुत डांट भी खाती थी, हालांकि हमेशा उनको बताते रहते थे, समझाते रहते थे, लेकिन संयोग की बात है लिख दिया, चिट्ठी चली गई। और विपरीत उत्तर लिखने से ही जिस काम के लिए पत्र लिखा गया था वो काम पूरा हुआ, जिनके पास भेजना था उनके पास न जाकर के दूसरी जगह चिट्ठी पहुंच गई, तो जहाँ पहुंच गई वही से काम होना था, इसलिए काम उनको पूरा हो गया। ये तो एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ईश्वर विश्वासी साधक के जीवन में अपना कोई संकल्प इतना जबरदस्त पकड़ करके रखना भी ठीक नहीं, क्या जाने ध्यान की वृद्धि से मेरे लिए क्या हितकारी है। तो अगर कोई बात मेरे ध्यान से बहुत जरूरी लग रही है और नहीं पूरी हो रही है, सावधानी को मुझे अवश्य रखना है, लेकिन उसका क्या परिणाम हो रहा है उसमें बहुत संतुलित रहना चाहिए। तो सभी लोग चाहिए अभिमान को तो मैं बताया है कि भाई करने में अपना अधिकार है और सफलता भगवान के हाथ है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन बातों से अपने को उलझना नहीं चाहिए। और मैं देखती हूँ कि जब प्राकृतिक विधान पर दृष्टि चली जाती है, प्रभुओं के सर्वहितकारी विधान पर दृष्टि चली जाती है, तो भीतर बहुत शांति होती है। ये तो ठीक है, अब देखना है कि इस घटना का अपने पर क्या हितकारी प्रभाव होता है, वो तो संतुलन बना रहता है। और मैंने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना विश्लेषण करके देखा है, क्योंकि सार्वजनिक सत्य है कि यदि आप होने वाली घटनाओं को महत्व नहीं देते हैं, अपनी सहज स्थिति में शांत होकर रह सकते हैं, तो आपके विचार इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि किसी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करने में आप प्रेम और सावधानी के खिलाफ नहीं करते। गीता भी बनी रहेगी, सावधानी भी बनी रहेगी, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। और व्यक्ति संकल्प अपूर्ति से शुद्ध हो जाए, मेरे को कोई चीज ही नहीं समझता, मेरा कोई स्थान ही नहीं है, मेरा कोई महत्व ही नहीं है, मुझको कोई कुछ गिनता ही नहीं है, हम तो इतना करके ही छोड़ेंगे, हम तो इतना करके ही रहेंगे, इस प्रकार की बात अगर आ जाती है तो माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है, बुद्धि इतनी सीमित हो जाती है, कुंठित हो जाती है कि एक गलती के प्रभाव से एक संकट आया था, उस संकट से अस्तव्यस्त हो जाने के कारण हजार संकट आदमी मोल ले लेता है, ये दशा हो जाती है। तो सत्संग का प्रभाव अचूक है, जिस किसी ने किया वह अवश्य ही सफल हुआ। और स्वामी जी महाराज ने कहा है कि एक बार का किया हुआ सत्संग सदा के लिए हो जाता है, एक बार का, एक बार किसी ने स्वीकार किया परम प्रेमास्पद से आत्मीय संबंध को, तो वह संबंध उसको परम प्रेमास्पद के प्रेम में मिला करके ही खत्म होगा, बीच में कहीं वो छोड़ेगा नहीं आपका साथ, कभी नहीं। तो एक बार का किया हुआ सत्संग सदा के लिए हो जाता है, इतना अच्छा होता कि हम सब लोग अपनी वर्तमान दशा में जहाँ है वहीं से आगे कदम बढ़ाने के लिए किसी भी रूप में किसी एक सत्य को स्वीकार करने से, तो अभी से इसी क्षण से हमारी आपकी प्रगति आरंभ हो जाती है। घटनाओं का प्रभाव, परिस्थितियों का प्रभाव, इच्छाओं की पूर्ति अपूर्ति का प्रभाव से तत्काल ही खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। हर प्रकार से अचाह और अकिंचन हम हो गए कि नहीं हो गए इसका विश्लेषण जरूरी नहीं है, लेकिन होने वाली घटनाओं को, आने जाने वाले दृश्यों को निहितार जानना ये बहुत जरूरी है। उसकी निहितारता से ही अपने में ये बल आता है कि उसको बनने बिगड़ने की परवाह नहीं करते। स्वामी महाराज ने एक घटना सुनाई थी उन लोगों को, आप लोगों ने भी सुना होगा, एनिवेशन के आश्रम की घटना। आग लग गई और करीब 1.25 लाख की संपत्ति जल गई, तो सब लोग आश्रम बाकी लोग हरे दफ्तर के होते ही हैं, हर आश्रम में घबरा गए, माता जी अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कैसे होगा, कैसे होगा। माता जी चुपचाप गंभीर देख रही है दृश्य सब। कई घंटों के बाद, 2-4 दिन तो नहीं बीते, 2-4 घंटे बीते होंगे, कोई व्यक्ति आया और 3 लाख संपत्ति खर्च करने के लिए माता जी से कहने लगा कि अच्छे काम में ये धन लगा दीजिए। तो देने वाला तो चला गया, माता जी अकेले उमड़े हुए हृदय से परमात्मा से कहने लगी कि अरे भाई इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी आपने क्यों भेज दिया, थोड़ा और ठहरते। हमारी क्या दशा हो रही है उसको जरा हम और देखते। ईश्वर विश्वासी निष्क्रिय सेवा भावी जो होते हैं वे इस प्रकार की प्रतिकूल घटनाओं में भी विकृत नहीं होते। हाय अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, अगर मैंने अपना अहम जोड़ा होगा सेवा कार्य के साथ, संस्था के साथ, आश्रम के साथ, अपना अहम लगाया होगा, मेरे करने से चल रहा है, मेरे संभालने से संभल रहा है, तो कोई प्रतिकूलता आएगी, घाटा लगेगा तो हमारे होश हवास गुम हो जाएंगे। मैंने अपने को परमात्मा का सेवक माना होगा, मालिक की दी हुई संपत्ति का साधन दृष्टि से उपयोग करना है मुझे, ऐसा अपने को माना होगा तो आर्थिक क्षति से मुझे क्यों घबराहट होगी। मालिक क्या उस क्षति से अनजान है, मालिक क्या उस क्षति की पूर्ति में असमर्थ है, ये नहीं है। मालिक अनजान भी नहीं है और असमर्थ भी नहीं है। तो ये बातें हम लोगों पर यह प्रकाश डालती हैं कि हम इतने उच्च कोटि के साधक अभी तक नहीं बन सके। राजकुमार सिद्धार्थ की तरह एक मृतक को देखा तो सब जीवित शरीरों में मृत्यु का दर्शन हो गया। मान लीजिए इस कोटि के साधक नहीं हुए तो हम जिस स्तर के हैं उस स्तर से हमारे विकास के लिए परमात्मा ने इंतजाम कर दिया। भाई प्रवृत्ति का राग नहीं छोड़ सकते थे तो मोह का कुटुम्ब छोड़ करके भगवत नाते आश्रम का कुटुम्ब में रहो, कमाई हुई संपत्ति का लोभ छोड़ दो तो सार्वजनिक संपत्ति के ट्रस्टी बनकर काम करो। किसने किया ये इंतजाम, प्रकृति ने किया है, परमात्मा ने किया है। एकदम से सहारा छोड़ने का साहस तुम्हें नहीं है तो व्यक्तिगत संपत्ति और का संग्रह और व्यक्तिगत संपत्ति का लोभ छोड़ दो और राग निवृत्ति के लिए सार्वजनिक संपत्ति के ट्रस्टी बनकर काम करो। ये इंतजाम हमारे उसी मालिक ने किया जिसको मेरा विकास अभिष्ट है। ऐसा जब हम करने चले हैं तो हानि और लाभ से व्यक्तित्व में संतुलन होगा। इतनी छोटी छोटी बातों से अहम रूपी अणु की विस्तृति का नाश होता है, उसमें उदारता आती है, उसमें निर्दोषता आती है, उसमें कोमलता आती है और वो जब शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो अनंत की विभूतियों से मिल करके अनंत के समान अनंत हो जाता है। अनित्य तत्व भी नित्य प्रेम से भाव में बदल जाते हैं, यह इतिहास प्रसिद्ध सत्य है। मीरा जी का दाह संस्कार नहीं हुआ, उन्होंने द्वारकाधीश के सामने एक प्रार्थना की, सजन सुधी ज्यों जानो ज्यों लीजे, और अंत में कहा मिल सुरन नहीं कीजे। उनके हृदय का प्रेम इतना बढ़ गया कि द्वारकाधीश की उनको अपने में मिलाए बिना रह नहीं सके। तो केवल मीरा जी का अलौकिक जो वो प्रेम रूप थी अहम था, वही द्वारकाधीश में नहीं गया। पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर भी प्रेम के प्रभाव से प्रेम के धातु में परिवर्तित होकर के सब शरीर मीरा जी द्वारकाधीश हो गयी। ये कलयुग के भक्त की चर्चा है, इतिहास प्रसिद्ध सत्य है। ऐसे अलौकिक तत्व को अपने में रखते हुए भी हम संसार की ठोकरें खाते फिरते हैं, अपमान सहते फिरते हैं, दुखी होते फिरते हैं। ये बड़े दुख की बात है, इसको हम सब लोग छोड़ दें और सचमुच प्रभु के प्रेम का पात्र बनना चाहते हैं तो जहाँ हमारा कदम है, जितना विकास अब तक हो चुका है, उसके आगे के लिए जो कर सकते हैं करते जाएं। पात्रता उपस्थित होते ही उनके प्रेम की लहरियों का स्पर्श हमें अनुभव होने लगेगा और वो जब आ जाता है, उनकी स्मृति की मधुरता से जब जीवन भर जाता है तो संसार की विस्मृति अपने आप हो जाती है। फिर भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं। माताओं बहनों और भाइयों, हम लोग सत्य की चर्चा करने बैठे हैं। चर्चा है, उसका अनुसरण जब हम करते हैं तब वह सत्संग कहलाता है। और संत वाणी में मैंने ऐसा सुना एक बार, महाराज जी ने कहा कि एक बार का किया हुआ सत्संग सदा के लिए हो जाता है, बार बार सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार यदि सत्य को किसी रूप में हमने स्वीकार कर लिया तो वह सदा के लिए हो जाता है। सुना है मैंने, आनंदमयी माँ के पास भी अगर कोई साधक जाता है तो पहले वो पूछ लेती है कि तुमने गुरु बनाया है, अगर वो कहे कि हाँ तो उसको ये सलाह देती है कि तुम्हारे गुरु ने जो बताया है उसी को करो, फिर अपना कुछ उसमें नहीं जोड़ती, तुम्हारे गुरु ने जो बताया है उसी को करो। मैंने चौरी जी की कथा सुनी है, उनके गुरु ने कह दिया था मतंग ऋषि ने, सौरी जी मेरा तो अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है तो आप ही उसी आश्रम में रहिएगा, भगवान यही मिलेंगे आपको। बातचीत ही न है, ऐसी बातचीत हम लोगों ने कितनी बार की है। तो गुरु ने ऐसे कह दिया
और उन्होंने पकड़ लिया तो सारी जिंदगी हम लोगों की तरह अपॉइंटेड आवत नहीं पूछा कि कौन किसी को कौन घड़ी में कितने बजकर कितने मिनट पर आएंगे, तो नहीं पूछा, केवल सुन लिया। गुरु ने कहा है कि आप यही रहिएगा, इसी आश्रम में भगवान यही मिलेंगे आपको। तो प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, ऐसी अखंड प्रतीक्षा। संध्या समय दीपक जला के कुटिया के दरवाजे पर बैठ रही है, चटाई बिछा के कलसा में जल रखकर फल दोनों में भर के, तो प्रभु आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं करते करते संध्या का सवेरा हो जाता है। उनको पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत गई। तो उस श्रद्धा ने, गुरु के वाक्य की स्वीकृति ने उनको भगवान से मिला करके ही छोड़ा। प्रभु से मिलकर इस पार्थिव शरीर का अंत करके ही वे अनंत से मिलकर अनंत हो गई। तब तक, जब तक ऐसा नहीं हुआ, तब तक एक बार का सुना हुआ गुरु का वाक्य उनके साथ रहा। तो महाराज जी ने ऐसे ऐसे अनमोल वचन हम लोगों को सुनाए। एक बार का सुना हुआ सदा के लिए हो जाता है। अब एक और शिष्य की कथा सुनिए। साधक थे, गुरु के पास गए, ये कल्पना नहीं है, महाराज जी की जानी हुई कथाएं हैं। बहुत दिनों तक उन्होंने गुरु की सेवा की। पात्रता प्राप्त करने के लिए पहले के लोग जाकर के गुरु से प्रश्न नहीं करते थे, उनको उन पर दबाव नहीं डालते थे कि मुझको शिष्य बना लो। प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब गुरु मुझे शिष्य बनाने के योग्य समझेंगे, तब दीक्षा देंगे, तब मैं जाऊंगा। तो वो गुरु की सेवा में रहे, कुछ समय बीता तो गुरु ने बुलाया उनको और मंत्र दे दिया। शिष्य की बनावट के अनुसार निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना का मंत्र उनको दे दिया। कह दिया कि सिवाय ब्रह्म के और कुछ नहीं है। जब जाने लगे वापस तो गुरु ने फिर से बुलाया और कहा कि बेटा देखो, जो गुरु का मंत्र होता है वो किसी को बताया नहीं जाता है। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हो गया, वो आश्चर्यचकित होकर गुरु की ओर देखने लगा। कहने लगा, महाराज आपने कहा है कि सिवा ब्रह्म के कोई और है नहीं, तो मैं कहूंगा किससे? आप मना कैसे कर रहे हैं कि किसी को कहना हो, और तो कोई है ही नहीं, तो मैं किससे कहूंगा? तो कहने के लिए कोई नहीं, उनसे किसी से नहीं कहना। एक बार का किया हुआ सत्संग सदा के लिए हो जाता है। और हम लोग साल में दो चार बार आयोजन जो कर रहे हैं, बैठकर सत्य की चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, यह क्या है? बार बार कहने की और बार बार सुनने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो मानव सेवा संघ के सिद्धांत के अनुसार यह जो सामूहिक रूप से बैठ करके सत्य पर विचार करने की बात है, यह सत्संग नहीं है, यह सत्य की चर्चा है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, विचार को स्पष्ट कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जिस दिशा में अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके उस समाधान की चर्चा कर रहे हैं। जहां पर अपने जीवन में साधन के जिस स्तर पर अपने में रुकावट मालूम होती है, उस रुकावट का कारण खोज रहे हैं, उसके निवारण के उपाय को सोच रहे हैं,